ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों में कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, काराकाट से उपेन्द्र कुशवाहा, बक्सर से मिथिलेश कुमार तिवारी और आरा से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद समेत कई प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ संख्या 182 और 183 पर शांतिपूर्ण माहौल में पुनर्मतदान सम्पन्न। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। चौथे चरण में राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और दरभंगा में प्रचार का शोर कल शाम समाप्त हो जाएगा। इन क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया है। तेलंगाना के महबूब नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश तबाह हो जाएगा।
कांग्रेस देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने में जुटी हुई है। कांग्रेस जानती है रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन संविधान विरोधी है। कांग्रेस ये भी जानती है कि बाबा साहब ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ये भी जानती है कि धर्म के नाम पर आरक्षण देश को तबाह कर देगा। कांग्रेस ये भी जानती है कि इससे नाजायज कन्वर्जन कराने वालों को बढ़ावा मिलेगा। फिर भी कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण से पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि यही कांग्रेस का असली एजेंडा है।
इधर महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कांग्रेस पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया।
ये लोग इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रख। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को दुत्कारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बन करके प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, चाहे परिवार की मानसिकता वाले, इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। श्री मोदी पटना साहिब से पार्टी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र से पार्टी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। भाजपा नेता नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री का रोड शो शाम 5:30 पर डाक बंगला चौराहा से शुरू होगा और भट्टाचार्य मोड़ कदम कुआं होते हुए गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन के पास समाप्त होगा।
12 तारीख को जो यात्रा प्रारंभ होगी रोड शो की, वो श्रीराम चौक डाकबंगला चौराहे से शुरू होगी। यहाँ से प्रारंभ होके ये एसपी वर्मा रोड, एसपी वर्मा रोड से फिर एग्जीबिशन रोड, एग्जीबिशन रोड चौराहा से भटचाया मोड़, भटचाया मोड़ से उमा सिनेमा होते हुए आपको कदम कुआं, कदम कुआं से शाही सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड और ठाकुरबाड़ी रोड के बाद उद्योग भवन पर ये पूरी रोड शो का कार्यक्रम समाप्त होगा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गया है। श्री शाह झारखंड के खूंटी में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।
मैं आज डंके की चोट पर यहाँ कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड और बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के मोहनपुर और बक्सर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि एनडी गठबंधन की सरकार बनने पर 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाने की शुरुआत होगी। पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रहते हुए लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण पर खतरा है।
मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के कान खोल करके देखना चाहिए।
इधर भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के समर्थन में पटना में एक जनसभा को संबोधित किया। एनडीए नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए लोगों से रविशंकर प्रसाद के पक्ष में मतदान की अपील की। सासाराम संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों का यह आरोप सरासर गलत है कि भाजपा संविधान बदल देगी।
1990 से लेकर 2007 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गरीबों को न्याय नहीं दिया, कभी आरक्षण नहीं दिया। लेकिन लालू जी जब सत्ता से बाहर होते हैं रोज चर्चा करते हैं, हम तो आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, संविधान खतरे में है। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है साथियों कि आप किसी भी हालत में, अब तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पुनर्जन्म हो जाए तो इस देश में फिर से कोई संविधान बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते हैं साथियों।
खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ संख्या 182 और 183 पर आज शांतिपूर्ण माहौल में पुनर्मतदान संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 61% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुनर्मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेलदौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पौड़ा पंचायत के सहरण गांव में बूथ संख्या 182 और 183 पर मतदान संपन्न हो गया। कोसी नदी के किनारे अवस्थित दोनों मतदान केंद्र पर नदी पार से नाव के सहारे भी पूरे उत्साह के साथ लोग मतदान करने पहुंचे। बीते 7 मई को हुए चुनाव के दौरान स्थानीय लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए मतदान का बहिष्कार किया था। इसी दौरान दो पक्षों में झड़प हो गयी थी। असामाजिक तत्वों ने ईवीएम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिला प्रशासन की पहल पर चुनाव आयोग ने इन दोनों बूथों पर पुनर्मतदान कराए जाने का आदेश दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद संसदीय क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन से पूर्व श्री प्रसाद ने एक रोड शो भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी ने लोगों से विकास के लिए अपने पक्ष में मतदान की अपील की।
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि हमारे बिहार के दो वरिष्ठ समूह के अभिभावक पूर्व राज्यपाल आदरणीय गंगा बाबू और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना से सांसद रहे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने और साथ में राजेश सिंह जी, हमारे प्रदीप मेहता जी ने हमें प्रस्तावित किया है। मैं नामांकन दायर कर दिया है। मैं पटना की जनता से आशीर्वाद चाहता हूं, जैसे पहले देश के लिए काम किया था आगे काम करूंगा।
काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन का पर्चा भरा। पत्रकारों से बातचीत में श्री कुशवाहा ने दावा किया कि इस बार एक तरफा लड़ाई है।
एक तरफा लड़ाई है। हमको मौका दिया था लोगों ने, यहाँ के लोगों ने 14 से 19 तक हमने भरपूर ईमानदारी से लोगों की सेवा की है। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है 10 वर्षों में, उनके काम के प्रति लोगों का आकर्षण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उनके प्रति आकर्षण है। तो कुल मिला जुलाकर समाज के सभी वर्ग के लोग मुखातिब हैं। सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार बने।
इधर सासाराम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम और बक्सर से भाजपा के मिथिलेश तिवारी ने भी नामांकन पत्र भरा। इसके अलावा बक्सर से इंडी गठबंधन से राजद उम्मीदवार सुधाकर सिंह और आरा से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने भी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। बक्सर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के अरुण कुमार ने नामांकन पत्र भरा। सातवें चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई तक निर्धारित है। अग्यांव विधानसभा उपचुनाव के लिए आज निर्दलीय विजय मेहरा ने नामांकन पत्र भरा। उपचुनाव के लिए अब तक 2 प्रत्याशी नामांकन पत्र भर चुके हैं। और अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात गोपालगंज लोकसभा सीट की। गोपालगंज बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
बिहार को 3 मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी देने वाला गोपालगंज एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट माना जाता है। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद यह लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया। वर्ष 2009 से अब तक हुए चुनावों में इस सीट पर भाजपा और जदयू का कब्जा रहा है। वर्ष 2009 में जदयू के पूर्ण मासी राम, 2014 में भाजपा के जनक राम और 2019 में जदयू के आलोक कुमार सुमन इस सीट से निर्वाचित हुए। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत गोपालगंज सीट जदयू के खाते में आई और पार्टी ने निवर्तमान सांसद आलोक कुमार सुमन पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं ईडी गठबंधन ने यह सीट विकासशील इंसान पार्टी के पास आई। पार्टी ने प्रेमनाथ चंचल को उम्मीदवार बनाया है। प्रेमनाथ चंचल की राजनीतिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है। उनके पिता सुदामा मांझी की पहचान जिला भाजपा के बड़े नेता के रूप में रही है। बहरहाल गोपालगंज सीट से कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार आलोक कुमार सुमन और ईडी गठबंधन के प्रेमनाथ चंचल के बीच ही माना जा रहा है। विधानसभावार स्थिति देखे तो एनडीए का पलड़ा मजबूत दिखता है। 6 में 4 विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा और जदयू का कब्जा है। 2 विधानसभा सीट पर राजद के विधायक हैं। बरौली और गोपालगंज में भाजपा, जबकि कुचायकोट और भोरे में जदयू के विधायक हैं। वहीं बैकुंठपुर और हथुआ विधानसभा क्षेत्र में राजद के विधायक हैं। कृषि प्रधान गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में कभी उद्योग धंधों की भरमार थी। 4 चीनी मिल, डालडा फैक्ट्री, कड़ाही फैक्ट्री समेत कई लघु उद्योग हुआ करते थे, लेकिन सब एक एक कर बंद होते चले गए। फिलहाल 2 चीनी मिल चालू है। यही कारण है कि रोजगार के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रम शक्ति का पलायन होता है। स्थानीय जन समस्याओं से इतर इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे अधिक हावी दिख रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधार पर लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं वीआईपी उम्मीदवार महंगाई और बेरोजगारी की बात कर मतदाताओं को गोलबंद कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र के 20 लाख से अधिक मतदाता किस गठबंधन के प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मदेश तिवारी।
पूर्वा हवा के प्रवाह से प्रदेश में बारिश की अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है।
अभी बिहार पर पूर्वी हवा का प्रवाह जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिणी पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर गरज चमक, तेज हवा और वर्षा का पूर्वानुमान है। उसके अगले दिन समग्र बिहार में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान दरभंगा के हायाघाट में सबसे अधिक 42.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 4th चरण के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों में कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बक्सर से मिथिलेश कुमार तिवारी और आरा से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद समेत कई प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ संख्या 182 और 183 पर शांतिपूर्ण माहौल में पुनर्मतदान सम्पन्न। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।